नमस्ते, मैं आरव हूँ। नाइन आर ट्री के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। जॉन स्टील गॉर्डन की एन एम्पायर ऑफ वेल्थ अमेरिकी आर्थिक शक्ति के उदय का व्यापक इतिहास है। यह पुस्तक उपनिवेशकालीन बस्तियों से शुरू होकर 21वीं सदी के आरंभ तक उस प्रक्रिया को देखती है जिसके द्वारा संयुक्त राज्य अमेरिका असाधारण उत्पादन, नवाचार और वैश्विक प्रभाव वाली अर्थव्यवस्था बना। गॉर्डन का उद्देश्य केवल धनवान व्यक्तियों या बड़ी कंपनियों की सूची देना नहीं है। वे दिखाते हैं कि संपत्ति का निर्माण संस्थाओं, कानूनों, वित्तीय व्यवस्थाओं, आप्रवासन, प्राकृतिक संसाधनों, उद्यमशील, जोखिम और तकनीकी बदलाव के परस्पर संबंध से हुआ। पुस्तक आर्थिक इतिहास को युद्धों, राजनीतिक संघर्षों और सामाजिक बदलावों से अलग नहीं मानती। अमेरिकी क्रांति के बाद की वित्तीय कठिनाइयों, बैंकिंग विवादों, औद्योगिकीकरण, गृह युद्ध, महामंदी और युद्धोत्तर तकनीकी विस्तार को एक ही दीर्घ आर्थिक कथा में रखा गया है। इसका दृष्टिकोण सामान्यतः बाजारोन्मुख और हैमिल्टनवादी है, इसलिए यह मजबूत वित्तीय संस्थाओं, राष्ट्रीय ऋण व्यवस्था और केंद्रीय बैंकिंग के महत्व पर विशेष बल देती है। जटिल विषयों को किस्सों, व्यक्तियों और निर्णायक नीतिगत मोड़ों के माध्यम से समझाने वाली यह लोकप्रिय इतिहास की पुस्तक है। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले जेम्सटाउन, निजी स्वामित्व और आरंभिक बाजार अर्थव्यवस्था। पुस्तक की आरंभिक आर्थिक कथा यह स्पष्ट करती है कि अमेरिकी समृद्धि किसी तैयार योजना का परिणाम नहीं थी। अंग्रेज बस्तियों को जीवित रहने, श्रम जुटाने और निर्यात योग्य वस्तुएं पैदा करने की कठिन चुनौती थी। जेम्सटाउन में तंबाकू की सफल खेती और इंग्लैंड के बाजार तक उसकी पहुंच एक आरंभिक उदाहरण बनती है कि स्थानीय संसाधन तभी संपत्ति में बदलते हैं जब उत्पादन, स्वामित्व, श्रम और व्यापार के लिए संस्थागत व्यवस्था मौजूद हो। गॉर्डन के व्यापक तर्क में भूमि तक अपेक्षाकृत विस्तृत पहुंच और निजी पहल के अवसर महत्वपूर्ण हैं। ऐसी व्यवस्थाओं ने लोगों को केवल जीविका के लिए काम करने के बजाय अधिशेष उत्पादन और निवेश के लिए प्रेरित किया। लेकिन इस आर्थिक आरंभ का एक गंभीर अंधेरा पक्ष भी था। श्रम की मांग ने अनुबंधित मजदूरी और बाद में दासता पर निर्भरता को बढ़ाया, इसलिए संपत्ति के सृजन की कहानी को समान अवसर की सरल कहानी नहीं समझना चाहिए। दक्षिण की बागान व्यवस्था ने निर्यात और पूंजी तो पैदा की, पर वह असमान अधिकारों और जबरन श्रम पर टिकी थी। पुस्तक का उपयोगी बिंदु यह है कि बाजार अपने आप नहीं बनते, उन्हें संपत्ति अधिकार, अनुबंधों की विश्वसनीयता, परिवहन, व्यापारिक संपर्क और श्रम व्यवस्था की जरूरत होती है। आरंभिक अमेरिका में इन तत्वों का मेल आगे के आर्थिक विस्तार की बुनियाद बना। दूसरा, हैमिल्टनवादी वित्त और राष्ट्रीय संस्थाओं का आर्थिक तर्क। गॉर्डन अमेरिकी आर्थिक इतिहास को समझने में अलेक्जेंडर हैमिल्टन की वित्तीय दृष्टि को केंद्रीय स्थान देते हैं। क्रांति के बाद नवगठित देश पर कर्ज था, उसकी साख कमजोर थी और राज्यों की वित्तीय नीतियां बिखरी हुई थीं। इस परिस्थिति में सार्वजनिक ऋण को व्यवस्थित करना, कर संग्रह की क्षमता विकसित करना और राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीय वित्तीय संस्थाएं बनाना केवल लेखांकन का प्रश्न नहीं था, यह सरकार की उधार लेने, निवेश आकर्षित करने और संकट में कार्य करने की क्षमता का प्रश्न था। पुस्तक का हैमिल्टनवादी आग्रह यह है कि सार्वजनिक ऋण यदि भरोसेमंद ढंग से प्रबंधित हो तो राष्ट्रीय साख की संपत्ति बन सकता है। इसके विपरीत स्थानीय और कमजोर बैंकिंग व्यवस्था, असंगत मुद्रा तथा केंद्रीय समन्वय की कमी वित्तीय घबराहटों को बढ़ा सकती है। गॉर्डन विशेष रूप से उस परंपरा की आलोचना करते हैं जो राष्ट्रीय बैंक और केंद्रीकृत वित्तीय शक्ति को स्वभावतः संदेह से देखती थी। एंड्रयू जैक्सन के दौर में बैंक संबंधी संघर्ष और उसके बाद की अस्थिरता इस तर्क के लिए महत्वपूर्ण उदाहरण है। यह दृष्टिकोण निर्विवाद नहीं है क्योंकि मजबूत केंद्रीय संस्थाओं के अपने राजनीतिक जोखिम होते हैं। फिर भी पुस्तक प्रभावी ढंग से बताती है कि आधुनिक अर्थव्यवस्था में विश्वास एक अमूर्त भावना नहीं बल्कि कानून, भुगतान व्यवस्था, ऋण बाजार और सक्षम प्रशासन से निर्मित सार्वजनिक अवसंरचना है। तीसरा, औद्योगिकीकरण, परिवहन और बड़े पैमाने के उद्यमों का उभार। पुस्तक के अनुसार अमेरिका की आर्थिक शक्ति का निर्णायक मोड़ केवल अधिक भूमि या जनसंख्या नहीं था बल्कि उत्पादन और वितरण को बड़े पैमाने पर संगठित करने की क्षमता थी। नहरों, रेलमार्गों और बाद में संचार प्रणालियों ने दूरस्थ बाजारों को जोड़ा। जब माल, सूचना और पूंजी पहले की तुलना में तेजी से चलने लगे तो स्थानीय उत्पादक राष्ट्रीय कंपनियों में बदल सके। औद्योगिकीकरण ने मशीनों, मानकीकरण और प्रबंधन की नई पद्धतियों को जन्म दिया। इससे उत्पादकता बढ़ी किंतु साथ ही बड़ी पूंजी, विशाल संबल और कॉरपोरेट शक्ति का संकेंद्रण भी बढ़ा। गॉर्डन इस दौर को केवल लुटेरे उद्योगपतियों अथवा केवल महान निर्माताओं की नैतिक कहानी में सीमित नहीं करते। उनका जोर इस बात पर है कि रेलमार्ग, इस्पात, तेल और विशाल विनिर्माण जैसे क्षेत्र ऐसी वित्तीय और संगठनात्मक क्षमताएं मांगते थे जो छोटे पारिवारिक व्यवसायों से परे थीं।
इसी कारण शेयर बाजार, निवेश बैंक और निगम आधुनिक अर्थव्यवस्था के आवश्यक अंग बने।
फिर भी तेज वृद्धि के साथ सट्टा, भ्रष्टाचार, श्रम संघर्ष और पर्यावरणीय लागत भी आई।
पुस्तक का विश्लेषण पाठक को यह देखने में मदद करता है कि आर्थिक पैमाना बढ़ने पर नियमन का प्रश्न क्यों कठिन होता है।
चुनौती बाजार बनाम सरकार की सरल पसंद नहीं, बल्कि ऐसी नियमावली बनाना है जो नवाचार और प्रतिस्पर्धा को बचाते हुए शक्ति के दुरुपयोग को सीमित करे। चौथा, बैंकिंग संकट, महामंदी और नीति की सीमाएं। एन एम्पायर ऑफ वेल्थ में आर्थिक संकटों को अमेरिकी प्रगति के बीच आने वाली दुर्घटनाएं मात्र नहीं माना गया है, वे वित्तीय संस्थाओं की कमजोरियों और नीतिगत निर्णयों के परिणाम भी हैं। 19वीं और आरंभिक 20वीं सदी में बार बार होने वाली घबराहटों के पीछे बिखरी बैंकिंग, असमान मुद्रा व्यवस्था और अंतिम सहारा देने वाली संस्था का अभाव महत्वपूर्ण था। इस पृष्ठभूमि में फेडरल रिजर्व की स्थापना आधुनिक वित्तीय शासन की दिशा में बड़ा कदम दिखाई देती है।
गॉर्डन की सबसे स्पष्ट दलीलों में से एक यह है कि महान मंदी की गहराई को समझने के लिए केवल शेयर बाजार के पतन को देखना पर्याप्त नहीं है। बैंक विफलताएं, ऋण का सिकुड़ना, मांग में गिरावट और मौद्रिक प्रबंधन की विफलता ने सामान्य मंदी को व्यापक सामाजिक आपदा में बदला।
इस व्याख्या का निष्कर्ष यह नहीं कि हर समस्या का उत्तर अधिक सरकारी हस्तक्षेप है, बल्कि पुस्तक संस्थागत क्षमता और उचित नीति के महत्व पर बल देती है।
मुक्त बाजार को चलने के लिए भी विश्वसनीय मुद्रा, भुगतान प्रणाली, अनुबंध प्रवर्तन और संकट प्रबंधन चाहिए।
पाठक यहाँ से यह समझ सकता है कि ऋण, मुद्रा और बैंकिंग के विषय तकनीकी दिखते हुए भी रोजगार, बचत और लोकतांत्रिक स्थिरता को सीधे प्रभावित करते हैं।
पुस्तक का दृष्टिकोण नीतिगत भूलों को आर्थिक इतिहास का सक्रिय कारण मानता है। अंत में आप्रवासन, युद्धकालीन अनुसंधान और डिजिटल अमेरिकी प्रभुत्व।
गॉर्डन की दीर्घ कथा में अमेरिकी अर्थव्यवस्था की ऊर्जा का एक स्रोत लगातार आने वाले लोग हैं।
आप्रवासी श्रम शक्ति भर नहीं बढ़ाते, वे कौशल, व्यापारिक संबंध, पूंजी, वैज्ञानिक ज्ञान और नई उद्यमशील महत्वाकांक्षाएं भी लाते हैं। इसलिए पुस्तक जनसंख्या को निष्क्रिय आंकड़ा नहीं, बल्कि संस्थाओं और अवसरों के साथ क्रिया करने वाली उत्पादक शक्ति मानती है।
20वीं सदी में अमेरिका की वैश्विक भूमिका युद्धों से भी बदली। द्वितीय विश्व युद्ध ने औद्योगिक उत्पादन क्षमता को अभूतपूर्व स्तर पर संगठित किया, जबकि रक्षा और सरकारी अनुसंधान ने ऐसी वैज्ञानिक क्षमताओं को बढ़ाया जिनके नागरिक उपयोग बाद में व्यापक हुए।
ट्रांजिस्टर, कंप्यूटिंग और नेटवर्क प्रौद्योगिकी के विकास को इसी लंबे संबंध में समझा जाता है। इंटरनेट और डिजिटल प्रणालियों ने जानकारी की लागत घटाई, उद्योगों की कार्यप्रणाली बदली और अमेरिकी कंपनियों के वैश्विक विस्तार को बल दिया।
हालांकि पुस्तक तकनीकी प्रगति को अमेरिकी नेतृत्व का महत्वपूर्ण आधार मानती है, यह निष्कर्ष निकालना उचित नहीं कि तकनीकी श्रेष्ठता स्थायी या स्वतः स्फूर्त रहती है।
उसे शिक्षा, निवेश, खुला विचार, विनिमय, प्रतिस्पर्धी बाजार और सार्वजनिक अनुसंधान की निरंतरता चाहिए। इस विषय का मुख्य महत्व यह है कि राष्ट्रीय शक्ति सैन्य साधनों से अलग नहीं, लेकिन केवल उनसे भी नहीं बनती।
दीर्घकालीन प्रभाव तब पैदा होता है जब अनुसंधान, उद्यम और बड़े बाजार नई तकनीक को उपयोगी उत्पादक क्षमता में बदलते हैं।
निष्कर्ष में, यह पुस्तक उन पाठकों के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो अमेरिकी इतिहास को युद्धों, चुनावों और राष्ट्रपतियों की अलग अलग घटनाओं के रूप में नहीं, बल्कि उत्पादन, ऋण, व्यापार, संस्थाओं और तकनीक की जुड़ी हुई प्रक्रिया के रूप में समझना चाहते हैं।
इतिहास, अर्थशास्त्र, सार्वजनिक नीति और व्यवसाय में रुचि रखने वाले सामान्य पाठक इससे ठोस पृष्ठभूमि प्राप्त कर सकते हैं।
इसका व्यावहारिक लाभ वर्तमान बहसों को संदर्भ में रखने में है।
सरकारी कर्ज, केंद्रीय बैंक, व्यापार, आप्रवासन, कॉरपोरेट शक्ति और आर्थिक संकट जैसी बहसें नई नहीं हैं।
पुस्तक दिखाती है कि इनके पीछे लंबे संस्थागत विकल्प और पुराने राजनीतिक संघर्ष हैं।
ओकन,
समान विषय की अकादमिक आर्थिक इतिहास पुस्तकों की तुलना में इसकी अलग पहचान व्यापक कालखंड, तेज कथात्मक शैली और वित्तीय इतिहास को सामान्य पाठक तक पहुंचाने की क्षमता है।
गॉर्डन आंकड़ों और संस्थाओं को मानवीय निर्णयों, जोखिमों और गलतियों के साथ जोड़ते हैं। हालांकि पाठक को इसके वैचारिक झुकाव को ध्यान में रखना चाहिए।
यह बाजारोन्मुख, हैमिल्टनवादी व्याख्या को प्रमुखता देती है और हाल के इतिहास को अपेक्षाकृत संक्षेप में समेटती है, इसलिए इसे अंतिम निष्पक्ष निर्णय की जगह एक प्रभावशाली दृष्टिकोण के रूप में पढ़ना अधिक उचित है। फिर भी इसी स्पष्ट दृष्टि के कारण पुस्तक उपयोगी बनती है।
यह आर्थिक समृद्धि को न तो प्राकृतिक नियति मानती है, न केवल निजी प्रतिभा का परिणाम। यह बताती है कि समृद्धि भरोसेमंद संस्थाओं,
खुली संभावनाओं, नवाचार, पूंजी और लगातार सुधार की क्षमता से बनती है तथा गलत नीतियों से कमजोर भी हो सकती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं जॉन स्टील गॉर्डन, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।